نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عبادات کے ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے. پیج 74 ہے اور وہ کیا ہے؟ مسلمان کی زندگی کا اصل مقصد اقامت دین ہے. اصل مقصد پہ تو بہت شروع سے بات ہو رہی ہے. اقامت دین کیا ہے تھوڑا سا اس کو سمجھیے. اس سے پچھلی ہی نشست میں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھا تھا کہ آپ کو کیا غم تھا, آپ کا مشن کیا تھا. آپ کڑتے تھے, جلتے تھے اس غم میں کہ لوگ اللہ کے بندے کیوں نہیں بن جاتے. تو جب ایک زندگی کا یہ ہم اور غم بن جاتا ہے نا کہ میں نے لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہے اور ان کو ابدی آگ سے بچانا ہے, تو اسی کو مقصد کہتے ہیں. اللہ کے نبی کی زندگی کا مقصد دین کی تکمیل تھی. اللہ نے جو آپ کے ذریعے دین پہنچایا, آپ نے اس کو اپنی حیثیت سے پورے کا پورا جتنا اللہ نے ان پہ ڈالا وہ دیا. اب مسلمانوں کو کلمہ پڑھنے کے بعد, لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد, خود کو اسلام کا نمائندہ کہنے کے بعد, عبادت کی جس منزل پہ خود کو فائز کرنا ہے وہ اقامت دین ہے. اقامت دین کیا ہوتی ہے اس کو آپ تھوڑا سا سمجھ لیجئے. اقام یقیم, کھڑا کرنا. لفظ قیام نماز میں ہم بولتے ہیں, قیام کرنا, اور سب جانتے ہیں کہ اس میں ہم کھڑے ہوتے ہیں. قیامت کا لفظ بھی اسی سے ہے. کیا قیامت قائم ہو جائے گی. اور یوم القیامہ کیوں کہتے ہیں قیامت کے دن کو؟ کیونکہ اس دن لوگ کھڑے ہوں گے. قیامت کے دن لوگ کھڑے ہوں گے, اس دن حساب کتاب کے لیے پلڑے قائم کیے جائیں گے. اسی طرح سے لفظ استقامت بھی اسی میں. استقامت کو الگ الگ لکھ کے دیکھیں, الف سین تا, ٹو سیک, طلب کرنا. است اور آگے قامت, کھڑے رہنے کی توفیق طلب کرنا. تو استقامت کیا ہوئی کہ بندے نے جس راستے کو چنا, پھر سیسا پلائی دیوار بن کر اس پہ کھڑا ہو جائے, پھر اس کو سمجھ آ جائے کہ میری زندگی اب اس سے ہٹنے کی نہیں. مثال دوں گی کہ اس گھر کی یا اس عمارت کی بنیادیں تو زمین میں تھیں, دیواریں کھڑی ہیں, چھت اوپر لیٹی ہوئی ہے. اگر اس میں سے کوئی ایک دیوار یا چھت یا بنیاد اپنی جگہ چھوڑ دے تو کیا ہوگا؟ یہی ہوتا ہے اس وقت جب ایک مسلمان دین پر عمل چھوڑتا ہے. دین کی عمارت میں رکھنے پڑ جاتے ہیں, دین کی دیواریں ڈھا دیں, دین کی چھت گرا دیں, دین کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیں, تو صرف ملبے کا ڈھیر ہے. اور آپ دیکھیں کہ جو بھی کسی گھر کے اندر ایسا کرے گا وہ خود بھی اس کے اندر دب جائے گا. آج مسلمانوں پہ جو مشکلات ہیں نا, اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دین کی اس عمارت کو قائم نہیں کیا. تو اقامت دین پھر کیا لفظ ہوا؟ دین کو قائم کرو. کیا مطلب؟ دین کوئی دیوار ہے جس کو قائم کرو, دین کوئی عمارت ہے جس کو قائم کرو. پیچھے ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی, یقیم الصلاۃ کا لفظ ہمیشہ قرآن میں آیا نا, کہ نماز کھڑی کرو. مطلب کیا تھا؟ کہ وہ سوسائٹی ہو کہ جس کو دیکھ کر پتہ چلے کہ یہ نمازی سوسائٹی ہے, جہاں لوگوں کو نمازیں دنیا کے ہر کام سے زیادہ پیاری ہوں. تو دین کو قائم کرنے سے مطلب کیا ہے؟ کہ جن کاموں کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ان کو کیجئے, اور جن چیزوں سے روکنے کا حکم دیا اس سے رک جائیے. دیکھیے, کوئی بھی چیز کتابوں میں پڑی رہے, فائلوں میں بند رہے, اس سے کیا ہوگا جب تک اس قانون کو نافذ نہیں کریں گے. مثال دے رہی ہوں کہ ہم اس وقت ناروے میں ہیں, ناروے کا کانسٹیٹیوشن ہے. کیا آپ کو یہ کانسٹیٹیوشن نافذ ہوا ہوا لگتا ہے؟ لاگو ہوا ہوا, قائم ہوا ہوا؟ بالکل ہوا ہوا. آپ ادھر سے 10 منٹ کی ڈرائیو پہ نہیں جا سکتے اگر آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہ ہو. جتنی مرضی اچھی ڈرائیونگ آپ کو آتی ہو, آپ کیا کہتے ہیں؟ مجھے آتی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں سوری, ہمارا رول یہ کہتا ہے کہ آپ ابھی نہیں کر سکتے, ابھی آپ لرنر ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ ناروے کا لا لاگو ہے. آپ سیٹ بیلٹ باندھ کے جاتے ہیں, چاہے راستے میں کوئی خطرہ ہے کہ نہیں ہے. 24 گھنٹے ہم اپنے ارد گرد قوانین کو نافذ ہوا دیکھتے ہیں, اسی کو اقامت کہتے ہیں. اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے, بچپن سے یہ بات سنی ہے. اسلام از اے کمپلیٹ لائف اسٹائل، وے آف لیونگ. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ایک جیتا جاگتا اسوہ حسنہ بنا کر بھیجا کہ دین اپلیکیبل ہے، آپ اس پہ عمل کر سکتے ہو، خوشی کا موقع ہے یا غم کا ہے. پانچ وقت کی جو نماز جو قائم ہوتی ہے نا، اصل میں یہ سمبل ہے، نشانی ہے کس بات کی؟ کہ دن میں پانچ بار جب اپنے کام چھوڑ کر اللہ کے حکم پہ چل پڑتے ہو تو پھر زندگی کے باقی معاملات میں بھی ایسے ہی ہوگا. افسوس اور حیرت ان لوگوں پہ ہوگی کہ جو پانچ بار نماز کے لیے تو جمع ہو جائیں سب چھوڑ چھاڑ کر، لیکن جب عملی کوششوں میں اللہ کے دین کی کسی کوشش، دین کو پروموٹ کرنے کی، اللہ کے حکم کو ماننے کی باری آئے تو کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ایک مسلمان کی زندگی کا اصل مقصد اقامت دین ہے. وہ ایک شعر ہے، غلط ہی ہوگا، لیکن وہ کیا ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. سر فرازی کیا ہوتی ہے؟ سر فرازا. آپ لفظوں کو توڑا کریں، ہم کہتے ہیں دین کی بلندی، سر اٹھا کے جیو. ہمارا مقصد کیا ہے زندگی کا؟ کہ ہم اللہ کے دین کو غالب کرے. سر فرازی غلبہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. کیا مطلب؟ کہ مسلمان ہونے کا جو سبق مجھے پڑھایا جاتا ہے اور نمازیں جو میں پڑھتا ہوں، اس کا اصل مقصد، اس کا ریزلٹ کیا ہے؟ کہ میں دنیا میں اللہ تیرے دین کو غالب کر دوں. آج کے دور میں نماز کے کانسیپٹ کو سامنے رکھ کر ذرا اس شعر کو پڑھے تو بات سمجھ ہی نہیں آتی. تو لہٰذا مجھ سے آپ سے اللہ کو وہ امید ہے جو آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجتے وقت اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وہ اس قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. خلیفہ کے لفظ پہ بحث کیے بغیر سمجھ لیں، اس دنیا میں اللہ کے پلان کو رنگ بھرنے والا انسان ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک نقشہ بنایا تھا کہ لوگوں کو ایسے جینا چاہیے، یہ چیزیں حلال ہیں، یہ حرام ہیں، یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دے دی کہ وہ اللہ کے اس پلان کو پورا کرے. جنات نہیں کر سکے، فرشتوں کو کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے. اب جب ایک انسان دنیا میں آ کر اپنی زندگی کا مقصد اللہ کے دین کی سر بلندی بنا لے، یہی ہے احسن تقویم، یہی ہے اشرف المخلوقات. اور جو اللہ کے دین کو ڈھانے کی کوشش کرے تو فرمائے والذین کفروا، یہ کافر ہے، یہ اندھیروں میں رہنے والے، یہ اللہ کے مقابل ہے. آپ اس کو ایسے سمجھیے، تھوڑا سا میں واضح کرنا چاہوں گی. آج کے دور میں گورنمنٹ کا جو سیٹ اپ ہے نا، اس میں کیا ہوتا ہے؟ حزب اقتدار، حزب اقتدار ہوتا ہے، اسے لوگ حزب کہتے ہیں. بہرحال حزب اقتدار اور حزب مخالف، اپوزیشن اور ڈومیننٹ پارٹی. ہوتا کہ جو گورنمنٹ قانون بناتی ہے نا، تو جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ اس کو اپوز کرتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا. جس کو حکومت مل جاتی ہے وہ اپنی من مانیاں کرنا چاہتی ہے، تو اپوزیشن کے لوگ ہر وقت اس پہ کیچڑ اچھالتے رہتے ہیں اور ان کے اوپر الزام لگاتے رہتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ دوسری پارٹی سر اٹھاتی ہے نا، تو اگر آپ کسی بھی حکومت کے نمائندے سے پوچھیں تو وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا ہم بہت اچھی حکومت چلا سکتے ہیں اگر یہ اپوزیشن والے ہماری کردار کشی نہ کریں. اچھا، اور جو اپوزیشن والے ہیں آپ ان سے پوچھیے، وہ کہتے ہیں یہ تو شکر کریں ہم ان کے ہر عمل پہ نظر رکھتے ہیں، ورنہ یہ تو ملک کو بیچ کے کھا جائیں گے. ایک ٹسل لگی رہتی ہے نا، صرف سمجھانے کی بات کرتی ہوں. یہی ٹسل دنیا میں اللہ کے دین کو پھیلانے والوں اور اس کے اندر روڑے ڈالنے والوں میں. اگر آپ ایک چھوٹی سی بات لکھ لیں جو آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ دے گی آگے جا کے، ہر انسان اپنے ارد گرد ہر وقت چار قسم کی جنگیں دیکھتا ہے. دو فریق جسم کے اندر ہے اور دو فریق باہر ہے. جسم کے اندر کون سے دو لڑنے والے ہیں؟ حزب اقتدار اور حزب مخالفت. ایک ہے نفس امارہ، من مانی چاہتا ہے، خود کو بڑا بنانا چاہتا ہے، اس کو ہر وہ چیز اچھی لگتی ہے جس میں نفس کو مزہ ہے، خوشی. ٹھیک ہے، और इसकी लड़ाई में जो दूसरा फरीक है ना, वो है नफ्से लवामा, मलामत करता है, वो उसको शर्म दिलाता है, डूब मरो, करतूत देखो अपने, ये करो वो करो। हर वक्त जिस्म के अंदर ये दो पार्टियां लड़ती रहती हैं। जब बंदा नफ्से अमारा के गलबे से कोई गलत काम करता है तो नफ्से लवामा उसको फिर कोसता है। अच्छा, अब इसमें जीतेगा कौन? इसका बहुत गहरा ताल्लुक है बाहर वाले गिरोह से। जिस तरह अंदर नफ्से लवामा और नफ्से अमारा की लड़ाई है, बाहर भी दो गिरोहों की लड़ाई है। एक वो है जो नफ्से अमारा को प्रमोट करते हैं, वो कहते हैं जैसा चाहो जियो, ईट ड्रिंक बी मैरी, इट्स योर लाइफ स्टाइल, चूज योर वे ऑफ लिविंग, नो वन हैज द राइट टू क्रिटिसाइज यू। बात समझ गए? ये लोग होते हैं जो नफ्स को मोटा करते हैं, जो फासिकीन में अक्सर आते हैं, कभी एंटरटेनमेंट के नाम पे, कभी दुखी इंसानियत की खिदमत के नाम पे, कभी परेशान जहनों के नाम पे, लोगों को ऐसा लाइफस्टाइल दिखा देते हैं मीडिया के थ्रू कि जिसको पाकर सीधे साधे घरों में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। मर्दों को फिर अपनी वो बीवियाँ नहीं अच्छी लगती जो सीधी सादी हैं, वो कहते हैं हमें वो चमकती स्क्रीन वाली चाहिए। इसी तरह और इस तरह के बहुत सारे सैतनिक ग्रुप्स हैं, शैतान को प्रमोट करने वाले, न्यूडिटी कैंप्स बनाने वाले, दुनिया में पूरे एसेट्स को अपने नाम पे लेने वाली तागूती कुव्वतें। इसका बहुत बड़ा दायरा कार है, लेकिन ओवरऑल हर वो जमात, गिरोह, इंसान जो नफ्स अम्मारा को प्रमोट करे, एक फिरका वो है बाहर का, गुनाह की तशखीर, हर वक्त लोगों की राल टपकती रहे, लोगों को ड्रीम्स दिखाते हैं, गुनाह से भी हासिल हो लेकिन खुशी बहुत मिलेगी जब तुम सूद पर घर ले लोगे, ठीक है। इसी तरह दूसरा फरीक जो बाहर है ना, वो है जो नफ्स लवामा को प्रमोट करता है, जो गुनाहों पे आर दिलाता है, जो बंदे को उसकी बंदगी का एहसास दिलाता है। इनको आप कहेंगे अल्लाह के पैगंबर। अपने दौर में ये नबी और रसूल थे, फिर बाद में उनके साथी बन गए खुलफाए राशिदीन, फिर ताबईन, फिर तबा ताबईन, मुहद्दिसीन, आइमाए कराम, और हर दौर के वो लोग जो लोगों को गुनाहों पे आर दिलाते हैं, जिसको लोग मौलवी कह लें, फकीह कह लें, मुफ्ती कह लें, लेकिन ये वो गिरोह होता है जो बंदे के नफ्से लवामा को उजागर करता है। इतनी बात समझ आ गई है? जो लोगों को बुराई और भलाई का फर्क बताता है। वो कहते हैं ये क्या देखा तुमने, तुम्हें पता है तुम्हारी आंखें जल गई हैं, डॉक्टर्स कहते हैं आप बड़ी करीब से टीवी देखेंगे आपकी आंखों में रेज आ जाएंगी, आप बीमार हो जाएंगे, आप लेट के देखेंगे आपकी आंखों का पर्दा टेढ़ा हो जाएगा। जिस तरह डॉक्टर्स और दुनियावी लोग आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए बताते हैं ना, ये जो चौथा गिरोह बताया ना, ये आपकी रूहानी सेहत का ख्याल रखता है। देखो, एक गंदा सीन देखते हो ना तो कब तक तुम्हारे दिमाग में मचलता रहता है, तुम्हारी नमाज से खुशू ही चला जाता है। रात की एक गलत एक्टिविटी तुम्हारी फजर ले जाती है, तुम्हें पता है इस बात का, ठीक है। अच्छा, अब हुआ क्या? चारों फरीक समझ आ गए? दोहरा देती हूँ, अंदर नफ्से लवामा और नफ्से अम्मारा, ये लड़ते रहते हैं। बाहर एक तरफ नफ्से अम्मारा को प्रमोट करने वाले, नफ्स को पूजने वाले, जी और जीने दो, मजा करो, मौज करो, बाबर बैश कोश के जहां दोबारा नीस्त, और उसके ऑपोजिट नफ्से लवामा को प्रमोट करने वाले, अहले खैर, इसलाह करने वाले, हर दौर में गुजरे और क्यामत तक रहेंगे। हदीस में आता है एक गिरोह हमेशा खैर पे रहेगा, पूरी दुनिया में शैतान नाचने भी लग जाए ना तो थोड़े से लोग जरूर उसके अपोजर होंगे। अच्छा, अब ये चार गिरोह और बीच में यहाँ पे आप एक छोटा सा हैंगमैन बना लें अपने नोट्स में, और उसके चारों तरफ ये चार दुश्मन और लड़ रहे हैं, जीतता कौन है? आपके अंदर नफ्से लवामा और नफ्से हमारा लड़ रहा है। एक कहता है कि अपनी ख्वाहिश पूरी करो, दूसरा कहता है नहीं, कोई फायदा नहीं, बाद में नुकसान होगा, वक्ती लज्जत है, बाद में गुनाह होगा। अच्छा, अब दोनों में से कौन जीतेगा? ये बड़ी काबिल गौर बात है, इसको लिख के अपने रखे, फिर ये आज का मौजू आप बहुत अच्छी तरह इंशाल्लाह समझेंगे अल्लाह ने चाहा तो। बाहर आपकी किससे दोस्ती है? आप किन लोगों में उठते बैठते हैं? अहले खैर में, या अहले शर में, नफ्से लवामा को प्रमोट करने वालों में या नफ्से अमारा को। बंदा बाहर जिस कंपनी में बैठेगा ना, लेट्स सी, सोहबत हो गई अहले शर से, फिल्में, ड्रामे, फैशन, गाने, शैतानी चीज़ें, बेपर्दगी, बेहयाई, हराम, जो भी दुनिया में गंद बंद है उसको देखने वालों में बैठ जाए, तो उस दिन आपके अंदर नफ्से अम्मारा जीतेगा। फौरन ये कॉप करेगा उससे जाके, वो अंदर स्ट्रांग होगा, उसकी आंखें खुल जाएगी, वो कहेगा हाँ मुझे पता है, बाहर से एक मेरा सपोर्टर आ रहा है, और वो कौन है, जो इसके दोस्त है, जो इसके साथी है, जो इसके कुलीग्स हैं, जिनके बीच में दिन रात उठता बैठता है। तो फिर आप मान लीजिए कि नफ्से लवामा की सारी मिन्नतें, समाजतें, रोना धोना बेकार हो जाएगा, बंदा सुनता ही कोई नहीं, कहता देखेंगे जब होगा, कर लेंगे, अल्लाह ने मेरे से ऐसा किया क्यों, मेरे ऐसे हालात क्यों बनाए, अल्लाह ने मुझे क्यों गुनाह पे मजबूर किया, अल्लाह ने फिर मेरे दिल में ख्वाहिशें क्यों डाली, फिर अल्लाह ने मुझे खूबसूरती क्यों दी, मुझे फिगर ऐसा क्यों दिया कि मैं दिखाऊं दूसरों को, ठीक है। और इसका ऑपोजिट भी अब आप समझ गए। अंदर नफ्से लवामा कब जीतेगा, जब बाहर आपकी दोस्ती, आपका उठना बैठना अहले खैर से होगा, अच्छी सोहबत, जलीस सालेह कहते हैं, गुड कंपनी। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अच्छी सोहबत खुशबू बेचने वाले दुकानदार की तरह, तुम्हें खुशबू कुछ दे ही देगा तोहफे में, कुछ भी नहीं देगा ना, तुम उसके पास बैठे हुए हो, वो बार बार शीशी खोल के बंद कर रहा है अपने गाहकों को दिखाने के लिए, तुम्हें ना भी दे वो खुशबू खोलेगा तो तुम्हारे नाक में खुशबू तो आएगी। मैं सोचती हूँ इससे ज़्यादा खूबसूरत मिसाल कोई दे नहीं सकता जो अल्लाह के नबी ने दे दी अच्छी दोस्तियों की। कहा वो तुम्हें ज़रूर खुशबू मिलेगी, वो ना भी देना चाहेगा तुम्हें मिल जाएगी। और बुरी सोहबत की मिसाल भट्टी फूंकने वाले की तरह, आयरन स्मिथ, लोहार, कि उसके पास बैठने वाले को वो भट्टी का धुआं और वो तेल का जलना और वो धातु का पिघलना उसका रंग काला कर देगा, उसके अंदर केमिकल्स चले जाएंगे। बुरी दोस्ती के असरात हमेशा होते हैं। अब इतनी बात वाजे हो गई, अब आप देखिए इसका ड्रॉप सीन देखते हैं। हर एक के साथ ये जिंदगी में चल रहा है। शैतान का क्या प्लान है, उसने क्या कस्में खाई थी आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में देखकर, सूरत अल अराफ का पहला रुको ही देख ले, सुम लातियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम, यानी उसने कहा था दाएं से आऊंगा, बाएं से आऊंगा, आगे से आऊंगा, पीछे से आऊंगा। अब आप देखिए शैतान का ओवरऑल लॉन्ग टर्म प्लान क्या, पूरी दुनिया के लिए, इस वक्त हम डिस्कस दुनिया का कर रहे हैं। एक शैतान था, उसके हेल्पर्स मिल गए उसको, उसने जाके चैलेंज किया था अल्लाह ताला को कि मैं आदम के रास्ते में बैठूंगा जो जन्नत को जाता है, और चलते चलते इसको डिट्रैक कर दूंगा, छोटी सी वजह आ जाएगी, इसको लगेगा इससे बड़ा पहाड़ी नहीं है मेरे रास्ते का, इतनी बड़ी खैर जन्नत का रास्ता छोड़कर उधर मुड़ जाएगा। अच्छा, अब इस एक शख्स के मुकाबले के लिए अल्लाह का प्लान क्या था, फ़इम्मयातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिया खुदाया या फला खौफन अलैहिम वला हुम यहज़नून। डे वन पे अल्लाह ने अनाउंस कर दिया था कि ए ज़ालिम जा, कुलनह भी तुम इन्हा जमी, सारे जाओ, और ए शैतान ए इब्लीस मैं तेरे इस चैलेंज से डरता नहीं हूँ, बल्कि मैं तेरा तोड़ किस सूरत में करूँगा, मैं हिदायत भेजूँगा, या तियन्नकुम मिन्नी हुदा, ये लफ्ज मिन्नी बड़ा काबिले गौर है, फ्रॉम माई सेल्फ, मेरी तरफ से हिदायत आएगी, किताबें, सहीफे, अंबिया कराम, रसूल, पैगंबर अपने अपने दौर में ये आकर मेरी गाइडलाइन लोगों को देंगे। फिर आगे क्या कहा, फमन तभी हदाया, जिसने मेरी हिदायत की पैरवी कर ली, पीछे इतबा तो आप सुन ही चुके हैं, नक्शे कदम पे पांव रखे, फुट स्टेप पे चला, फला खौफन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ये है अल्लाह का फैसला। अगर दुनिया में आने वाले लोग, जिसमें आज मैं और आप सब भी शामिल हैं, अल्लाह की भेजी हुई हिदायत, गाइडलाइन की इत्तबा करें, लव समझ गए मैंने, इत्तबा कदम पे कदम रखना है, एड़ी से एड़ी मिलानी है, पंजे से पंजा मिलाना है, जहाँ उंगलियां रखनी थी वहां उंगलियां ही रखनी है, जहां हील थी वहां हील ही रखनी है, मर्जी नहीं करनी, जो कह दिया है वो करना है। तो फरमाया फला खौफन अलैहिम वला हुम यहसनून। ये है सच्चे इस्लाम पे अमल करने की नक्त दौलत, कि जिंदगी से खौफ, गम, दुख, बीमारी, परेशानी खत्म। अब अल्लाह ताला ऐसी बेबाक और पाक दुनिया चाहते थे। अल्लाह का प्लान असल में ये था कि पूरी दुनिया के लोग खुश रहें, ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इसके बरक्स वल्लज़ीना कफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना, जिन लोगों ने कुफर किया और तकजीब की हमारी आयतों की, वलाइक असहाबुन्नार, शैतान की कोशिश है लोग असहाबुन्नार हो जाएं, अंधेरों में गिर जाएं। अल्लाह का फैसला है ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तो एक मुसलमान की जिंदगी का असल मकसद क्या है? टेंशन फ्री दुनिया को बनाना। बात समझ गए? एक ऐसी पुरअमन दुनिया के ला खौफ़न अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना गम, ना दुख, ना परेशानी, ना कोई किसी को सताए, ना कोई दुखाए, माल सामने पड़ा है कोई देखे भी ना, इज्जतें सामने महफूज हैं, लेने वाले नहीं देने वाले बन जाएं। असल इस्लाम ये था कि आप गासिब ना बने, आप सेल्फिश ना बने कि दूसरों का खून निचोड़ें, आप दुनिया में रहते हुए लोगों की इज्जतों से खेलें। इस्लाम ये नहीं चाहता था। इस्लाम कहते हैं हुक्मरान है ना वो देने वाले बन जाएं, राया जो है ना वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने वाली बन जाए। अल्लाह का तो ये प्लान है, उमर जैसे खलीफा आ जाएं और रियाया बन जाए माइज असलमी जैसी और गामदी कबीले की औरत, के जिनसे गुनाह हो जाए तो वो सीधे अदालत में पहुंच जाए, खुद घर में ना जाए। ये है एक मुसलमान का हदफ। अब शायद जो मैंने इतनी लंबी कहानी सुनाई है ना, इसको आप समझ जाए। इस्लाम को इकामत दीन की इस्तिलाह क्या कहती है, यानी इस्लाम में जो लफ्ज इकामत दीन है ना, आपको समझ आई ये बात? कि एक ऐसी खूबसूरत सोसाइटी बन जाए कि जहां ना चोरियां हो, ना चिकारियां हो, ना इज्जतों को खतरा हो, ना माल को। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया था हजरत अलविदा पे, कि तुम्हारी जानें, तुम्हारे माल, तुम्हारी इज्जतें एक दूसरे पर ऐसे ही हराम है जैसे आज का दिन, ये जगह, ये घड़ी, ये शहर। कितनी ताजीम है काबा की, किबले की कितनी इज्जत है। जाए नमाज को उल्टा नहीं बिछाते, लेकिन दूसरों की इज्जतों को कैसे पामाल करते हैं, दूसरों को हम कितना दुख देते हैं, ताने, इल्ज़ाम, झूठ, बहतान, गीबतें और झूठा नाम। ठीक है, तो मेरी आपकी ज़िंदगी का जो असल मकसद है वो ये है कि दुनिया को पुरअमन सोसाइटी दी जाए, पीसफुल सोसाइटी। अब असल इस्लाम को जो आप कहते हैं, जो सूरत मायदा में हमें दिखता है, चोर के हाथ काट दो, कत्ले खता की ये सज़ा है, कत्ले अमद की ये सज़ा है, यानी बाय मिस्टेक कत्ल हो तो ये सज़ा, वैसे हो तो ये हो, एहराम में क्या कर सकते हो क्या नहीं, या सूरत नूर में जो जिना और बेहयाई के बारे में बातें हैं, कोई जिना करे तो उसको ये सज़ा दे दो। अब ये जो चार छः चीज़ें हैं ना इस्लाम की, देखिए मैंने ये लफ्ज़ इकामत दीन इतनी देर में खोला है आपके सामने, क्या पहले दीन का मकसद समझे? इस्लाम ये नहीं चाहता कि मैं आप चोरियां करने वालों के हाथ काट दें। आपको सऊदी अरब में कितने लोगों के हाथ कटे दिखते हैं, या अल्लाह के नबी के दौर में कितनों के कटे होंगे? असल ये है कि अगर बिग सिनेरियो में एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट कर दी जाए जिनको इतना अल्लाह का खौफ हो, किसी की चीज़ की तरफ नजर भर के ना देखे, हाथ उठाना तो बड़ी दूर की बात है। एक मर्द किसी औरत की तरफ नजर ना उठाए, उससे जिना करना तो बड़ी दूर की बात है। गोल ये है, इस गोल को अचीव करने के लिए बीच में कुछ चेक पॉइंट लगा दिए कि जिना करेगा तो उसकी सजा रजम है, चोरी करेगा तो हाथ काट दो, ताकि दो चार को सजा मिल जाए बाकी ठीक हो जाए। ना तो इस्लाम को कायम करने या इकामत दीन का मतलब यह है कि आप इस्लामी सजाएं नाफिज कर दें, ना चोरियों वालों के हाथ काटने की जरूरत पड़ेगी ना कुछ, ये तो कोई इक्का दुक्का होगा। इस तरह के लोग तो वैसे ही कई दफा हैंडीकैप पैदा हो चुके होते हैं, ऐसे कि तो कई शहर में आपको हादसों में बेचारे हाथ कटे हुए दिखेंगे, इट्स नॉर्मल। तो आज इस्लाम को बदनाम किया गया, 60 साल से जायद हो गया आई थिंक सो पाकिस्तान को बने हुए, आज तक लोगों को ये लफ्ज इकामत दीन ही नहीं समझ आया। वो कहते हैं बड़ी मुश्किल है इस्लामी सजाएं। इस्लामी सजाओं की जरूरत ही नहीं पड़ती जब लोगों के जहन इस्लामी बन चुके होते हैं। हाँ, आज अगर इस एज इट इज राइट अवे पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम आएगा तो मान लीजिए कि आधे पाकिस्तानियों के हाथ कटे हुए होंगे और सारे ही हुक्मरानों में इल्ला माशाल्लाह जिसको अल्लाह बचाए वो तह तह होंगे। लेकिन इस्लाम ऐसे आता नहीं है, इम्पोज नहीं किया। 13 साल तक तस्किया किया गया साहबा का, मारें खिलाएगी पीछे अपने बड़ा बिलाल अहद अहद पुकारते थे, अंदर कूट कूट के आखरत का एहसास भर दिया गया। फमै यामल मिसकाल ज़र्रतिन खैरिन यरा और शर्रिन यरा, चीज़ पड़ी रहती थी, लोग उसको देखते नहीं थे। यतीमों के माल में इतने कॉन्शियस हो गए कि लगा कि इनको अगर हमने हाथ भी लगा लिया तो ये तो जलता हुआ अंगारा है। ये 13 साल तक प्रोसेस चलेगा। अभी आप चाहते हैं चले पूरी दुनिया को एक तरफ करें, पाकिस्तान में इकामत दीन हो, आप चाहते हैं किसी मुल्क में, पहले आप लोगों का तज़किया करेंगे। और यही नबियों ने किया, तरबिया और तज़किया। 3 दफ़ा अल्लाह के नबी का ये अमल कुरान में हमें मुख्तलिफ अल्फाज में मिलता है कि लक़द मन्नल्लाहु लिल मोमिनीन इस बासफ़ीहिम रसूलम मिनहुम, रसूल ने जो कुछ किया, युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम, लोगों को इल्म सिखाया, कुरान सिखाया, हदीस सिखाई, हिकमत सिखाई और सबसे बढ़ के उनका तज़किया किया। कम अज कम 13 साल प्लान आपको भी इस शहर के लिए बनाना पड़ेगा। क्यों? पहले तज़किया होगा, साथ साथ तरबियत और एक ऐसी लीडरशिप की इताअत का इस्लाम ने कूट कूट कर जज्बा भर दिया कि उमर फारूक जैसे मजबूत शख्स भी गलत बात उनको लगती थी बोलते नहीं थे आगे से। अल्लाह के नबी के आगे नहीं बोले, बाद वाले खलीफाओं के सामने लोग नहीं बोले। पता भी लग रहा है कि ये बात सही नहीं, लेकिन क्या करे, अल्लाह के नबी ने नॉमिनेट किए। ये समा अताज चाहिए। 2 चीजें आज मुसलमानों को मतलूब, पब्लिक का तज़किया और तरबियत। इल्म दीजिए, आप अपनी गली की जिम्मेदारी ले लें, फिर उसके बाद अपने मोहल्ले की ले लें, फिर आप अपनी कॉलोनी की ले लें, फिर आप अपने शहर की ले लें, फिर आप अपने अपने मुल्क की ले लें, फिर आप एक से दूसरे मुल्क के बाद सारी छोटी छोटी इकाइयों को मिलाएंगे तो पूरी दुनिया में इस्लाम आ चुका होगा। ना तो ये जंग से आएगा, ना नारों से आएगा, ना बाइकॉट से आएगा, ना धरनों से आएगा, ना एजिटेशन से आएगा। इकामत दीन का रास्ता इल्म है। इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। जितना मर्जी टाइम लगा ले, हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं उम्मत का। 60 साल हमने ज़ाया कर दिए उम्मत के। जिस दिन हुकूमत को और अहले इख्तियार लोगों को ये यकीन आ गया ना कि इल्म से ही रास्ता खुलेगा, आप कुरान सुन्नत के इल्म को प्रमोट करने के लिए करोड़ों रुपया लगाएंगे। वल्लाही जिस दिन इल्म पे पैसा लगने लग जाएगा ना, तो ये चोरियों चिकारियों जेलों पे और बाकी रिहैबिटेशन पे लगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जिस दिन पाकिस्तान में ये दीन कायम हुआ ना, सबसे पहले तो थाने ख़त्म हो जाएंगे, ज़रूरत ही नहीं रहनी पुलिस की, सारी पुलिस ख़त्म, वो मुसलमान हो गई अब। फिर उसके बाद आप देखिए, जब ये सब कुछ होगा ना, तो उसके बाद आप देखेंगे फ़ौज की ज़रूरत ही नहीं रहनी, क्योंकि हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। मदीना में फ़ौज किधर थी मुसलमानों की? असाबे सुफ़ा थे, जो दिन में इल्म का पानी लेते थे ना, ईमान के पौधे उगते थे, वो शामों को जिहाद के लिए निकल जाते थे। आज भी बेस्ट फौज और आर्मी वही है किसी मुल्क की, जिनके दिल ईमान से भरे हैं, जिनकी जुबानें ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ती हैं, जिनके दिल अल्लाह सुबहान तआला की बड़ाई के साथ से चूर हैं। वो मैदान जंग में जाके तीर फेंक आते हैं, वो सिर्फ मट्टी फेंक आते हैं, अल्लाह उसको तीर बना देता है। वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाहा रमा। दिल में जज्बाए ईमान ना हो तो जज्बाए जिहाद और दीन के लिए कुछ करना, ये नारे हैं। जो फजर की नमाज के लिए नहीं उठ सकता ना सुबह उठ के, मान लीजिए वो दुश्मन के आने पे जंग के लिए भी नहीं उठेगा। आज हमने अपनी नस्लों के घुटनों में पानी डाल दिया, पानी इतना दिया उन पौधों को कि गल ही गए, ज़्यादा पानी भी गला देता है। लाड इतने देखे, नखरे इतने देखे, लग्जरियस लाइफ इतनी कर दी कि वो अब हम भी मर रहे होंगे तो पता नहीं उस वक्त उठेंगे कि नहीं, वो बिजी होंगे। मेरा दिल करता है खून के साथ ये लफ्ज़ लिखूं जो मैं बोल रही हूँ। ये तड़प, ये दर्द अगर आप कहीं पहुंचा सके तो पहुंचा दें। आज लोगों का मजीद वक्त मत जाया करें। जितनी जल्दी हम मुसलमान इल्म काम करने में अपनी जान, माल, वक्त, एफर्ट, एसेट्स लगाएंगे, उतनी जल्दी दीन कायम होगा। जिनकी नमाजों में रब नहीं है, उनकी जंगों में रब कहाँ होगा? आप सहाबा के किस्से पढ़े, आप हैरान हो जाते हैं। एक दुश्मन ने कहा था सहाबा के लिए कि हुम फुरसानुम बिन नहारी व रुहबानुम फिल लैल, दिन के वक्त ये घुड़सवार बन जाते हैं, दुश्मनों की आंखों में आंखें डाल के घूमते हैं, दुश्मन डरता है इनसे, और रातों को अल्लाह के खौफ से रोने वाले राहे बन जाते हैं। इनकी रातें अल्लाह के आगे रोने वाली रातें हैं। आज ये कॉम्बिनेशन दीजिए, ये आपके घर से शुरू होगा। हर माँ को ये हदफ दिया है कि तुम अपनी ज़िंदगी का मकसद दीन को कायम करो। अब इसके लिए कोई आपको लंबे चौड़े फतवे लेने की ज़रूरत है, कोई आपको डिग्रीज लेने की ज़रूरत है, कोई 10 साल आलिमा का कोर्स करने की ज़रूरत है आपको? कतन नहीं। आपको ईमान का जज्बा लाने की ज़रूरत है। माँ का तर्ज़किया, माँ की तरबियत होगी, बाकी काम आसान। अच्छी माएँ दें लोगों को, दीन खुद ही कायम हो जाएगा। क्योंकि आज ये दर्द है मेरे दिल में कि लोगों ने इतने प्यारे दीन को इतना बदनाम कर दिया। जी इस्लाम सजाओं का नाम है, इस्लाम में चोरों के हाथ काट दो, ये तो इंसानियत सो सजाएं। इतना प्यारा रब जिसने इतनी प्यारी कायनात बना दी, क्या वो इतने क्रूशियल किस्म के अहकामात देगा? आपको अल्लाह से ये उम्मीद भी है? क्या प्यारा रब अर रहमान अर रहीम, अल्लाह अल वदूद, अल वहाब, अल करीम, अल लतीफ, क्या वो आपके हाथ कटवाना चाहता है? क्या वो आपको सूलियों पे चढ़ाना चाहता है? नहीं, वो तो एक डरावा दिया था लोगों को, नहीं करोगे तो फिर ऐसा होगा, तो ऐसे की तो जरूरत ही नहीं पड़ती। फिगर एंड फैक्ट्स खोल के देख लीजिए, जितने लोग हादसों में मर जाते हैं, इतने तो इस्लामी सजाओं में नहीं मरे कभी। और वेस्ट ने वो प्रोपेगंडा दिया औरतों को, कल परसों एक इतनी गंदी खबर मेरी आंखों के सामने गुजरी। अगर ये सच है तो सर शर्म से झुकने के करीब है। अल्लाह जाने ये सच है कि नहीं, मुझे नहीं पता इसका, लेकिन हकीकत ये है कि अगर ये कैफियत आ गई है हमारे ही अपने मुसलमानों में, तो सर हमारे ही शर्म से झुके हुए हैं कि औरतों ने अपने मतलब स्पेशल डेज में यूज करने वाले पैड्स, उसको बेस बनाकर कि ये छुपा के क्यों देते हैं, ये खाकी कागज में लपेट के क्यों देते हैं? उन्होंने यूनिवर्सिटी की दीवारों पे गंदे पैड्स लगा दिए और कपड़ों पे सुर्ख खून लगा लगा के वो फेरी हैं कि आप इसको इतना क्यों बुरा कहते हैं। ये मेरे फोन में खबर है, हवाले, रेफरेंस, मुल्क, जिस या आपके मुल्क की एक यूनिवर्सिटी में हुआ है। ये कौन सा हक आपने लिया और लोग इसको प्रमोट कर, ये कोई हक है? फिर तो आप कल अपना ट्रैश भी सारा गंदगी बाहर दीवारों पर चिपकाएं, फिर टॉयलेट अंदर बनाएं कि बाहर बनाएं? देखिए ये होता है कि लकद खलकनल इंसान फी अहसनी तकवीम सुम रददना हु असफल असाफिलीन। बराबरी के शौक ने बंदे को इतना जलील कर दिया, उसको पता ही नहीं मैं कर क्या रहा हूं। तो ये शैतान नाचता, ये बेहयाई और बदकारी है, तशील फाहिशा है। तो ये तो फिर होगा जब इज्जत ना होगी दिल में इस्लाम की, जब औरतों की नजरों में हया है ही नहीं, उनको अपने औरत होने के लफ्ज़ पे ही लग रहा है कि उसके लिए इसमें कोई खूबी और खैर की बात नहीं है, तो फिर आप बताइए ये तो होगा, ये तो फिर होगा। एक तरफ वो औरतें भी, बच्चियां भी थीं कि जिनके दिल ईमान से भरे पड़े थे, कि हज़रत फातिमा की कहानी आप सुनते होंगे, जो इस्लाम वाली औरतें और माएँ बेटियाँ थीं, उनकी कैसी खूबसूरत जिंदगियाँ थीं, इज्जतों के साथ जीती थी। आज औरत बेइज्जत हो गई, वजह क्या है कि उसका तज़किया नहीं हुआ। तो अब ये सारी दुख भरी कहानी सुनने के बाद आपको इस बात का यकीन आ जाना चाहिए कि मेरी आपकी इस मुख्तसर सी जिंदगी का मकसद इकामत दीन है। मेरा हाल है कि अब लफ्ज़ इकामत दीन समझ आ गया होगा।